हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज इस प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम कक्षा में, और हम विशेष स्वागत करते हैं हमारे बीच में उपस्थित इसके सर्वद्रेक प्रभु का। जी वैसे आप में से अधिकतर भक्त प्रभु जी से परिचित होंगे, पिछले वर्ष भी प्रभु जी यहाँ पर उन्होंने काफी समय बिताया और हम अपना संग दिया। इस बार भी प्रभु जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। प्रभु जी का संक्षिप्त में परिचय, प्रभु इसके सर्वद्रेक प्रभु जी ने श्रील प्रभुपाद जी के शिष्य हैं और अभी वर्तमान में अमेरिका में नॉर्थ कैरोलिना में श्रील प्रभुपाद विलेज फार्म कम्युनिटी है, तो प्रभु जी वहां पर निवास करते हैं और वहीं पर शहरों में प्रभु जी प्रचार करते हैं। और अभी प्रभु जी भारत आए हुए हैं और भारत पे भी लगभग एक महीना पहले भारत में थे और अलग अलग दिशाओं में प्रभु जी प्रैक्टिकली ट्रेवल करके वहां पर प्रभु जी का अपना संग प्रदान कर रहे हैं। और प्रभु जी जाने जाते हैं अपने बहुत स्कॉलरली और डिवोशनल लेक्चर्स के लिए अपने, और प्रभु जी नियमित रूप से उनकी शालिग्राम शिलाएं हैं और प्रभु जी के रूम में भी हैं, अगर हमें मौका मिला हम दर्शन भी करेंगे। प्रभु जी नियमित रूप से उनकी वर्शिप करते हैं। तो अभी प्रभु जी कुछ दिनों के लिए पंजाबी बाग में होंगे और प्रभु जी का हमें संग प्राप्त होगा, तो हम अधिक से अधिक मात्रा में प्रभु जी से श्रवण करें, सेवा किसी तरह करके प्रभु जी का संग का लाभ उठाएं। और कक्षा शुरू होने से पहले जो अनाउंसमेंट हर बार की जाती है, आपके मोबाइल फोन्स जो होंगे कृपया आप उसको साइलेंट मोड पे कर लीजिए, और अगर किसी भक्त को लग रहा है कि उसका मोबाइल फोन साइलेंट मोड पे है फिर भी आप निकाल के चेक कर लीजिए कि वो सही में साइलेंट मोड पे हो। थैंक यू। हरे कृष्ण।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं विजयाय। Reading from Srimad Bhagavatam this morning, Canto 8, Chapter 2, Text 31.
Srimad Bhagavatam, 8th verse, Kan, Adhyaya 2, Shlok Sankhya 31.
Itam gajendra sadyat yadapi sankatam Anasya dehi vivaso yadichchaya Aparayanatma vimokshane chiram बुद्धिम
शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य। इस डिवाइन ग्रेस इसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद के इत्थम इस प्रकार से गजेंद्रा हाथियों के राजा ने सा उस यदा जब आप प्राप्ति की संकटम ऐसी भयानक स्थिति प्राणस्य जीवन की देही देहधारी विवशा परिस्थिति वश असहाय यदृच्छया दैव की इच्छा से अपार्यन असमर्थ होकर आत्मविमोक्षणे अपनी रक्षा करने में चिरम दीर्घ काल तक दध्यव गंभीरता पूर्वक सोचने लगा। इमाम ये बुद्धिम निर्णय अथ तत्पश्चात अभ्यपद्यता प्राप्त हुआ पहुंचा। अनुवाद। जब गजेंद्र ने देखा कि वह देवी इच्छा से घड़ियाल के चुंगल में है और देहधारी होकर परिस्थिति वश असहाय है एवं अपने को संकट से नहीं उबार सकता, तो मैं मृत्यु से अत्यंत भयभीत हो उठा। फलस्वरूप उसने दीर्घ काल तक सोचा और अंतोगत्वा वह इस निर्णय पर पहुंचा। कृपया दोहराए। जब गजेंद्र ने देखा कि वह देवी इच्छा से घड़ियाल के चुंगल में है और देहधारी होकर परिस्थिति वश असहाय है एवं अपने को संकट से नहीं उबार सकता, तो वह मृत्यु से अत्यंत भयभीत हो उठा। फलस्वरूप उसने दीर्घ काल तक सोचा और अंतोगत्वा वह इस निर्णय पर पहुंचा। तात्पर्य, प्रत्येक प्राणी इस भौतिक जगत में जीवन संघर्ष में लगा है। प्रत्येक प्राणी अपने को संकट से बचाना चाहता है, किंतु जब वह अपने को नहीं बचा पाता और यदि वह पवित्र होता है तो वह भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करता है। इसकी पुष्टि भगवत गीता में हुई है। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतो अर्जुन अर्थ जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी चा भरत ऋषभा। चार प्रकार के पवित्र व्यक्ति, जो संकट में हो, जिन्हें धन की आवश्यकता हो, जो ज्ञान की खोज में हो तथा जो जिज्ञासु हो, अपनी रक्षा के लिए या प्रगति करने के लिए भगवान की शरण ग्रहण करते हैं। गजेंद्र ने इस संकट की घड़ी में भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करने का निश्चय किया। पर्याप्त विचार करने के बाद ही वह इस सही निर्णय पर पहुंचा था। ऐसा निर्णय पापी व्यक्ति नहीं ले पाता। अतएव भगवत में कहा गया है कि जो पवित्र सुकृति हो वह ये निर्णय ले सकते हैं कि संकट या विषम परिस्थिति में मनुष्य को कृष्ण के चरण कमलों की शरण ग्रहण करनी चाहिए।
राधा कुंडम गिरीवर महो राधिकमादवासम कृपया श्री गुरु तन्मतस्मि। वंदे नंदाद्वित स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु निचोपी यत्प्रसाद भक्ति शस्त्र प्रवर्तक नित्यानंदमहं नौमि सर्वानंदकरं परं हरिनाम पदं देवं अवधूत शरणं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासुदेव गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वंचा कौपा सिंधु पावन योग श्री गौर नमो नमः। The first point we should consider in this verse and purport is that everyone is in danger.
पहला पॉइंट जो हमें समझना है इस श्लोक के अनुवाद एवं तात्पर्य से कि हम सभी विषम परिस्थिति में हैं।
But these stories that we read in Srimad Bhagavatam are extremely instructive for everyone's life.
श्रीमद् भागवतम में हम जितनी कथाएं पढ़ते हैं वे अत्यंत निर्देशात्मक हैं हमारे जीवन के लिए।
One of the greatest illusions in life is to think that I'm secure in my occupation. I have money, I have a home, I have a car, everything's good.
सबसे बड़ा भ्रम इस भौतिक जीवन में है कि हम बहुत सुरक्षित हैं अपने काम धंधे में, अपनी गाड़ी घर परिवार जन के साथ।
But in any moment, the whole thing falls apart.
परंतु किसी भी क्षण ये सारी चीजें गिर सकती हैं।
Close friend of mine was celebrating his birthday with his wife and his father-in-law. Close friend of mine was celebrating.
तो जी बता रहे हैं वे अपने एक करीबी मित्र के साथ एक जन्मदिन मना रहे थे उनकी पत्नी और उनके भाई के साथ।
It was a happy day. It's his birthday. He's with family. They're eating nice prasadam dinner. Everything's happy.
और बहुत ही अच्छा दिन था और बहुत अच्छा सेलिब्रेशन हो रहा था, अच्छा खाना था, अच्छा माहौल था, वातावरण था।
And the next moment, disaster struck.
और अगले ही क्षण एक दुर्घटना हुई।
His wife fell out of the chair dead.
अचानक ही जो उनकी पत्नी थी कुर्सी में गिर गई मृत।
This is the nature of material world.
ये भौतिक प्रकृति है।
We're thinking we're very secure because we have material opulence.
हमें लगता है कि हम बहुत सुरक्षित हैं क्योंकि हमारे पास भौतिक ऐश्वर्य है।
But there's no guarantee that it lasts for even another moment.
इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि ये हमें बचाएंगे।
And this whole Srimad Bhagavatam comes from Maharaj Parikshit's discussion. What is the duty of a person who is on the verge of death?
और श्रीमद् भागवत का प्रकट्य हुआ जब परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी से पूछा कि एक मृत आसीन व्यक्ति का क्या कर्तव्य है?
And our question is, who is not on the verge of death?
प्रश्न ये है कि मृत आसीन कौन व्यक्ति नहीं है?
Is there any guarantee that any one of us sees the next sunrise?
क्या इस बात का कोई आश्वासन है कि हमारी अगले क्षण मृत्यु नहीं होगी?
So because of this illusion, people think, I'll become Krishna conscious later. I have lots of time.
इसलिए लोगों को ये भ्रम होता है कि कृष्ण भावनामृत बाद में बने, हमारे पास बहुत समय है।
There is an urgency to become Krishna conscious.
कृष्ण भावनामृत बनने के लिए एक अर्जेंसी है।
Because there are no guarantees whatsoever.
क्योंकि इस बात का कोई आश्वासन नहीं है किसी भी रूप में।
So what is the duty of a person who's on the verge of death? What is the duty of all of us? Is to become Krishna conscious, to leave this place and return to the kingdom of God.
एक मृत आसीन व्यक्ति का क्या कर्तव्य है? हम सब का क्या कर्तव्य है? कृष्ण भावनामृत बनना, इस संसार को छोड़कर वापस भगवत धाम जाना।
And take the whole world with us.
और पूरा विश्व को हमारे साथ लेके जाना।
This is a special characteristic of Gaudiya Vaishnava devotees.
एक गौड़िया वैष्णव भक्त का ये विशेष कैरेक्टरिस्टिक है।
Prahlad Maharaj prayed, Naivodaji Paradudaktyara Vaitaranya Stadhirya Gayana Mahamada Magda Chitta So Cheta To Vimukha Cheta Se Indriyata Maya Sukhayam Varamud Bhato Vimudha Prahlad Maharaj prayed that I have no problems.
Prahlad Maharaj prarthna arpit karte hain ki mere ko vyaktigat roop se koi samasya nahi hai.
I'm glorifying the Lord and chanting His name. I've taken shelter. As Gajendra is taking shelter here, I'm going back to the kingdom of God.
मैं भगवान की महिमा का यशोगान कर रहा हूँ, उनके पवित्र नाम का उच्चारण कर रहा हूँ, उनकी शरण प्राप्त कर रहा हूँ, और मैं वापस भगवत धाम जा रहा हूँ।
But I have one great anxiety.
परंतु मेरी एक बड़ी चिंता है।
सोचे तो विमुख चेतस इंद्रियार्था। I am in anxiety for these foolish people who think they're going to go on forever living a life of sense gratification.
मैं मूर्ख लोगों के लिए चिंतित हूँ जो ये सोचते हैं कि हमेशा इंद्र तृप्ति का जीवन जी सकते हैं और उसमें प्रसन्न रह सकते हैं।
This is called indriyartha.
इसको कहते हैं इंद्रियार्थ।
Indriyartha means that my real interest in life is satisfying my senses, my mind and my senses.
इंद्रियार्थ का अर्थ है जब व्यक्ति सोचता है कि उसका असली उद्देश्य है जीवन में इंद्रियों को और मन को संतुष्ट करना।
This is the greatest illusion.
ये सबसे बड़ा भ्रम है।
Because we're not these senses.
क्योंकि हम इंद्रियां नहीं हैं।
Krishna says in Bhagavad Gita, Indriyani Pranyahor Indriyabhya Paramana Manasistu Parampojya Yopude Paratastusa. That above this gross body, this fleshly body, there is the senses. Above the senses is the mind, above the mind is the intelligence, above the intelligence is the soul proper.
भगवत गीता में भगवान कृष्ण बताते हैं कि इंद्रियों से ऊपर मन है, मन से ऊपर बुद्धि, बुद्धि से ऊपर अहंकार, उससे ऊपर आत्मा।
People don't understand. They have no connection with the senses except through the principle of ahankar.
तो लोग इसको समझ नहीं पाते कि उनको इंद्रियों से किस प्रकार से संबंधित हैं।
Due to the principle of ahankar, we think I am happy when my senses are happy.
और ये है अहंकार। जब व्यक्ति को लगता है कि मैं तब प्रसन्न होऊंगा जब मेरी इंद्रियां संतुष्ट होंगी।
This is gross foolishness.
ये बहुत ही मूर्खता पूर्व स्थूल मूर्खता है।
Everyone likes to eat gulab jamun. Everybody likes to eat gulab jamun.
हर एक को गुलाब जामुन खाना बहुत पसंद है।
If I put one gulab jamun on this cartel here,
अगर मैं गुलाब जामुन को इस करताल के ऊपर रख दूं यहाँ पर,
can the cartel enjoy gulab jamun?
क्या करताल उस गुलाब जामुन के स्वाद का आनंद उठा सकता है?
We can understand that easily.
हम इसको बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं।
But this cartel is no different from my sense of taste.
ये करताल और मेरी जो जीवा है इसमें कोई अंतर नहीं है।
We have no connection with the cartel. We have no connection with our sense of taste except through ahankar.
मेरा करताल से कोई संबंध नहीं है और मेरा जो आस्वादन करने वाली इंद्री है उससे भी कोई संबंध नहीं है अहंकार के अलावा।
We put gulab jamun in our mouth. Oh, I'm so happy.
हम गुलाब जामुन मुंह में रखते हैं और लगता है ओह मैं बहुत खुश हूँ।
But it's a sense of taste registering sensation in our brain and the soul is aloof from that.
ये जीवा ये जो हम स्वाद करने वाले इंद्रिया है इस पे हम कुछ रखते हैं और ये हमारे सिर्फ दिमाग में कुछ हो रहा है आत्मा से इसका कोई संबंध नहीं।
Because the senses are just instruments by which we navigate the material world.
क्योंकि इंद्रिया सिर्फ ऐसे उपकरण है जिसके द्वारा हम इस भौतिक जगत में विवरण करते हैं।
Like I'm wearing these glasses so I can read the fine print.
कि जैसे मैं ये चश्मा पहना हुआ है कि जिससे मैं इस अक्षरों को पढ़ सकूं।
But these glasses can't see.
परंतु ये चश्मे अपने आप में नहीं देख सकते.
And my eyes can't see either. They're seeing instrument. They're not the seer.
इसलिए और मेरी आंखें भी नेत्र भी हैं वो नहीं देख सकते. ये सिर्फ उपकरण है. ये असली दृष्टा नहीं है.
Because don't we see when we're asleep? Our eyes are closed and we see in dream.
क्योंकि जब हमारे नेत्र बंद भी होते हैं तब हम स्वप्न में देखते हैं.
So who is the seer? Who is the taster? Who is the toucher? Who is the smeller? And who is the hearer?
तो कौन है जो दृष्टा है, जो स्वाद करता है, जो सूंघता है?
But people in illusion think that's me and I'm enjoying my senses. But senses are separate from the self. They're dead material energy.
भ्रम के अंदर व्यक्ति सोचता है ये मैं हूँ और मैं इंद्रियों का भोग कर रहा हूँ और परंतु ये भ्रम है.
So this is our anxiety.
तो ये हमारी चिंता है.
For those people who think there's no higher purpose in life than enjoying senses.
उन लोगों के लिए जो ये सोचते हैं कि जीवन में इससे ऊपर कोई उद्देश्य नहीं है बजाय सिवाय इंद्रिय तृप्ति के.
The next verse in Bhagavatam explains, "Prayena deva muniya svavimukti kama." That there's another class of persons who want to be liberated from this material world, but they have no interest in helping anyone else.
उसके भागवतम में अगला ही श्लोक आता है कि एक ऐसी श्रेणी है लोगों की जो इस भौतिक जगत से मुक्त होना चाहती है परंतु उनका अन्य लोगों की सहायता करने में कोई रुचि नहीं है.
So they go to a sacred place, they meditate, they chant japa, they worship the deity, and they're thinking, by this I'll be liberated, good for me.
तो किसी निर्जन पवित्र स्थान पर जाते हैं, वहां पर जप तप करते हैं, अर्श विग्रह की पूजा करते हैं और लगते हैं, उन्हें लगता है कि हाँ अब ये मेरे लिए सिद्धि है.
Their liberation is not as glorious as a devotee who thinks, how can I help people who are suffering in this material due to lack of ignorance?
उनकी मुक्ति इतनी महान नहीं है जितना कि एक भक्त की होती है जो ये विचार रखता है कि मैं किस प्रकार से अन्य जीवात्माओं की सहायता कर सकता हूँ.
This is the disease in the material world. People don't know the ABCs of life, that we're the soul, we're eternal, and we can't stay here in this world.
ये भौतिक जगत में लोगों की बीमारी है. उन्हें नहीं पता कि हम जीव आत्मा है, हम हमेशा यहाँ पर नहीं रह सकते.
Even the so-called big religions in the world are all ignorant. Ignorant.
यहाँ तक कि बड़े बड़े धार्मिक ग्रुप भी जो है वो भी अज्ञान है.
Christianity is one of the biggest religions in the world.
Christianity एक सबसे बड़ा धर्म है आज विश्व में.
But they're ignorant to what is the characteristic of the soul.
परंतु एक जीव आत्मा का असली ज्ञान से वह अज्ञान है.
They say there's no previous life and there'll be no future life. You have one life only.
वो कहते हैं कि आपका पूर्व जन्म नहीं था और आपका अगला जन्म नहीं होगा.
This is gross ignorance.
वो कहते हैं आपका सिर्फ यही एकमात्र जीवन है.
ये
स्थूल अज्ञानता है.
They don't understand ABC, second chapter Bhagavad Gita. Dehinos minnida dehe komaram jovanam jana tathadi hantara praptir devas tatra namoyati. That we're passing through different stages in life and at the end of life we pass into another life. They don't understand this simple thing.
श्रीमद भगवत गीता जो एबीसी बताई गई है आध्यात्मिक जीवन की, उसका दूसरा अध्याय जो पहला निर्देश है उसको भी नहीं समझते कि किस प्रकार से हम जीवात्मा है शरीर में और जीवात्मा का अगला जन्म होता है.
And if you ask them, who were you before you were you?
अगर हम उनसे पूछें आप कौन थे अभी जो आप हैं उससे पहले आप कौन थे,
they have no answer.
उनके पास कोई उत्तर नहीं
है. Or if you ask them, why is one person born an athlete? One man is born crippled. One man is born intelligent. One man is born dumb. One has a long life. One has a short life. One is rich. One is poor. They have no answer for this question.
अगर आप उनसे पूछें कि क्यों ऐसा होता है कि एक व्यक्ति का जो जन्म होता है वह एक स्पोर्ट्समैन बनता है, एक व्यक्ति विकलांग बनता है, एक बहुत अमीर घर में जन्म होता है, एक गरीब उसमें होता है, एक कोई बुद्धिमान होता है, एक मूर्ख होता है, तो उनके पास इन प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं है. वो कहते हैं ये सब इस विश्व के रहस्य है.
This isn't an answer. This is ignorance.
ये उनका उत्तर है और ये अज्ञानता है.
We understand karma na daivana chena jantra deho bhavatiye stripa vishtu udaram tung sareta kanasha. From the moment of conception, our life is chopped out due to our previous activities, paap and punya.
और हम समझते हैं, हमें शास्त्र से ज्ञात है कि गर्भ अवस्था से ही जीवात्मा का पूरा जो जीवन है वो निर्धारित होता है और अगला जीवन भी है.
So if we analyze the world's so-called great religions, we find they're simply ignorant.
अगर हम अन्य बड़े-बड़े धर्मों का अवलोकन करें, तो उनके पास भी कोई उत्तर नहीं है.
The basic principles of life. What is the soul? What is the objective of life? How to return to the kingdom of God?
In जीवन के जो basic सिद्धांत हैं, उनके बारे में उनको कोई ज्ञान नहीं है कि जीवात्मा क्या है, जीवन का उद्देश्य क्या है, भगवत धाम क्या है.
Srila Prabhupada said that religion without philosophy is sentimentality.
Srila Prabhupada ji कहते थे एक ऐसा धर्म जिसका कोई दर्शन नहीं है, वो सिर्फ एक sentimental भावुकता है.
Whether they say Allahu Akbar or praise the Lord or Shanti Shanti Shanti, we're interested in knowledge. What is knowledge of the soul? What is the goal of life?
चाहे वो अल्लाहु अकबर कहे या कहे भगवान का प्रेस उनको उनका यशोगान करो, परंतु हम हमारी जो रुचि है वास्तविक ज्ञान के अंदर.
So ISKCON society is basically an educational institution.
जो हमारी ISKCON संस्था है उसका वो वास्तविक में ये एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है जो ज्ञान प्रदान करता है.
Why do we expend gallons of blood and millions of dollars building temples and distributing books and distributing prasadam and preaching for this simple thing to educate people in an ignorant world?
हम क्यों इतने बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण करते हैं, इतनी मात्रा में पुस्तक वितरण करते हैं, प्रसाद वितरण करते हैं लोगों को ये एक ज्ञान देने के लिए?
That the ultimate goal of life is to take shelter of the Lord.
कि जीवन का अंतिम उद्देश्य है भगवान की शरण ग्रहण करना.
So before the crocodile of death approaches us, as it approached Gajendra, we should take shelter of him before that moment comes.
इससे पहले जो मृत्यु का घड़ियाल है हमारी तरफ हमें दबोचे, जैसे कि गजेंद्र को दबोचा है, हमें भगवान की शरण ग्रहण करनी चाहिए.
Gajendra is taking shelter of the Lord because he's in trouble. That's very good. But before we experience trouble, we should take shelter of the Lord. That's much better.
Gajendra, भगवान की शरण ग्रहण कर रहा है क्योंकि वह इस समय विषम संकट में है और ये बहुत अच्छी बात है. परंतु हमें भगवान की शरण इस संकट में आने से पहले ही ग्रहण करनी चाहिए.
And the practical way in which we take shelter of the Lord is to take shelter of the Lord's devotees.
और व्यवहारिक रूप से हम भगवान की शरण कैसे ग्रहण करते हैं, उनके भक्तों की शरण ग्रहण करके.
पार्वती asked Lord Shiva, who is the most worshipable personality?
पार्वती जी ने भगवान शिव से प्रश्न पूछा कि कौन इस सबसे ज्यादा वर्शिपेबल व्यक्ति है.
Lord Shiva said, Aradhananam Sardesham Vishnu Aradhanam Param Tasmat Paratanam Devi Tadiyanam Samacharam. That of all worshipable personalities, Lord Vishnu is topmost. But more than the worship of Lord Vishnu is the worship of those things in connection with Lord Vishnu.
सभी व्यक्तियों में से जो सबसे आदरणीय और पूजनीय व्यक्ति है वो है भगवान विष्णु, परंतु उनसे भी ज्यादा पूजनीय है उनके भक्त.
The devotees are more worshipable than the Lord.
जो भक्त हैं वो ज्यादा मात्रा में पूजनीय हैं भगवान विष्णु से.
And the Lord's formula for taking shelter of him is to take shelter of his devotee.
और भगवान का जो फॉर्मूला है कि उनकी शरण किस प्रकार से ग्रहण की जा सकती है, उनके भक्तों की शरण ग्रहण करके.
Especially for neophyte devotees who has no concrete conception of God, how to take shelter of God, how to serve him. We have to do so under the instruction of his devotee.
विशेष रूप से कनिष्ठ भक्तों के लिए जिनको सही मात्रा में ज्ञान नहीं है भगवान और इस भगवत विज्ञान के बारे में, तो किस प्रकार से उनकी शरण ग्रहण करेंगे उनके भक्तों की शरण लेकर.
We don't take shelter of error, of a conception, of a book, of a CD. We take shelter of persons, pure devotees of the Lord.
हम किसी हवा का, किसी मानसिक कल्पना का, एक सीडी का, एक पुस्तक का, इनकी शरण ग्रहण नहीं करते.
Who've dedicated themselves to the propagation of Krishna consciousness all over the world.
हम ऐसे भक्तों की शरण ग्रहण करते हैं जिन्होंने अपना जीवन समर्पित किया है इस कृष्ण भावनामृत के प्रचार के लिए.
Foolish people think I can take initiation from a book or a CD.
मूर्ख लोग सोचते हैं कि मैं एक पुस्तक से, एक सीडी से दीक्षा प्राप्त कर सकता हूँ.
In this way I'll contact spiritual master.
और इस प्रकार से मैं आध्यात्मिक गुरु से संपर्क में आ सकता हूँ.
Ask them, can the book ask you, did you understand what you read?
उनसे आप प्रश्न पूछिए कि आप पुस्तक आपसे पूछ सकती है कि आपको समझ आया जो आपने इसमें मुझमें से पढ़ा.
Can a piece of plastic ask you, did you understand what you heard?
क्या एक जो प्लास्टिक का टुकड़ा है क्या वो ये पूछ सकता है कि आपको कुछ समझ आया जो मैंने क्या कहा?
This is why Srila Prabhupada said in several places in his books that we take shelter of a physically present spiritual master.
इसलिए श्रील प्रभुपाद जी ने अपनी पुस्तकों में कहीं जगह कहा है हम वर्तमान एक जो व्यक्ति हैं जो जीवित व्यक्ति उनकी शरण ग्रहण करें.
Because we get Krishna from Krishna's devotees.
क्योंकि हमें कृष्ण कृष्ण भक्त से मिलते हैं.
Bhagavatam says, Rahugunaita tabasana yati na chijya nirvapana grihava na chandasa naiva jalagnasara vina mahatpada rajobhishekam. In any other process, you can build fire around your body, you can submerge your body in freezing water, you can execute sannyas perfectly, you can be perfect grihastha, but unless you take shelter of the lotus feet of devotee, you'll never get Krishna.
श्रीमद् भागवतम में श्लोक आता है कि आप एक बहुत अपने चारों ओर अग्नि लगा सकते हैं, सर्दी में पानी में डूब सकते हैं, सन्यास धर्म का अच्छे से पालन कर सकते हैं, एक आदर्श गृहस्थ हो सकते हैं, परंतु जब तक आप भगवान के शुद्ध भक्त के चरण कमलों की शरण ग्रहण नहीं करते, तब तक आप भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते.
Because devotees are extremely dear to the Lord.
क्योंकि भक्त अत्यधिक बहुत ही प्रिय होते हैं भगवान.
In Srimad Bhagavatam, there's a nice section where the four Kumaras curse Jayanvijaya.
Srimad Bhagavatam mein ye katha aati hai ki jab char Kumar Jay Vijay ko shrap kar dete hain.
Lakshmi and Narayan appear on the scene and the Lord speaks some very beautiful verses glorifying devotees.
To wahan par Lakshmi Narayan prakat hote hain aur bahut hi sundar shlokon ka uchcharan karte hain jisme wo bhakton ki mahima ka gaan kar rahe hain.
I want to read some.
मैं उन कुछ लोगों को पढ़ना चाहता हूँ.
This is from Srimad Bhagavatam. Anyone in the entire world, even down to the chandala, who lives by cooking and eating the flesh of a dog.
कोई भी इस संसार में बड़े से बड़े व्यक्ति से लेकर चंडाल तक जो एक कुत्ते का मांस पकाकर खाता है,
is immediately purified if he takes bath and hearing through the ear the glorification of my name, fame, etc.
वह तुरंत ही शुद्ध हो जाता है अगर वह स्नान करता है मेरे महिमा के शोगान में, मेरे पवित्र नाम लीलाओं के श्रवण से.
Now you have realized me without doubt, therefore I will not hesitate.
आपने अब मुझे बिना किसी संशय के साक्षात्कार किया है.
I will not hesitate to cut off my own arm if its conduct is found hostile to you.
मैं अपना खुद का हाथ काटने से भी पीछे नहीं हटूंगा अगर उनका व्यवहार किसी भी प्रकार से आपको दुखी करता है.
This is amazing thing.
ये बहुत ही आश्चर्यजनक बात है.
The Lord is saying, I'll cut off my own arm if it's hostile to my devotee.
भगवान कह रहे हैं कि मैं अपना हाथ काटने के लिए भी तैयार हूँ अगर किसी का व्यवहार उनके भक्त को दुख देता है.
The devotee is so dear to Krishna.
एक भक्त भगवान कृष्ण के इतने प्रिय है.
The Lord continued.
भगवान ने आगे कहा,
Because I am the servitor of my devotees.
क्योंकि मैं अपने भक्तों का दास हूँ.
My lotus feet have become so sacred.
मेरे जो चरण कमल है इतने पवित्र बने हैं.
That they immediately wipe out all sin.
कि वे किस तुरंत ही हर प्रकार का जो पाप है उसको हटा सकते हैं, शुद्ध कर सकते हैं.
The Lord is saying that my feet are sacred because of my relationship with the devotees.
भगवान कह रहे हैं कि मेरे जो चरण कमल है पवित्र इसलिए हैं क्योंकि मेरा भक्तों के साथ संबंध है.
I do not enjoy the oblations offered by the sacrificers in the sacrificial fire.
जो यज्ञों में आहुति दी जाती है मैं उसको एंजॉय नहीं करता.
Which is one of my own mouths. One of my own mouths. Which is one of my own mouths.
जो कि मेरा एक मुंह है.
Which is with the same relish as I do with the delicacies.
उतनी मात्रा में मैं उसका उसको स्वीकार नहीं करता जितनी मात्रा में मैं एक जो भोजन है.
Overflowing with ghee.
जो घी से भरपूर है.
Which are offered to the mouths of the brahmanas.
कि जो आप ब्राह्मण को अर्पित करते हैं.
Who have dedicated to me the results of their activities.
जिन्होंने मुझे पूर्ण रूप से समर्पित कर दिया है अपने कार्यों में.
And who are ever satisfied with my prasad.
और जो हमेशा सदा एक संतुष्ट रहते हैं मेरे प्रसाद से.
Srila Prabhupada comments in the
purport. Srila Prabhupada तात्पर्य में लिखते हैं.
The chanting of the holy name of God and pleasing the Vaishnavas are the only means to elevate oneself to spiritual life.
भगवान के पवित्र नामों का जप और भगवान के भक्तों की सेवा की एकमात्र तरीका है अपने आप को आत्म साक्षात्कार का.
So Srila Prabhupada created this ISKCON society for this purpose.
Srila Prabhupada ne spasht kiya hai ki ISKCON jo sanstha hai iska uddeshya kya hai.
To increase the number of Vaishnavas.
Vaishnavo ki sankhya ko badhana.
And when we live the life of Vaishnava वैष्णव आचार पीपल विल बिकम अट्रैक्टेड.
और जब हम वैष्णव आचार का जीवन जीते हैं तो लोग आकर्षित होंगे.
बिकॉज हु इन द वर्ल्ड बट अ वैष्णव कैन रिस्पेक्ट यू.
पूरे संसार में ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो एक वैष्णव का सम्मान नहीं करे.
एवरीबॉडी एल्स इज योर कंपेटिटर.
अन्य वैष्णव को छोड़कर अन्य जितने भी जन हैं वो आपके कॉम्पिटिटर हैं.
वैष्णव कॉल्स यू प्रभु एंड गिव्स यू प्रसादम एंड रिस्पेक्ट्स यू एंड लव्स यू.
वैष्णव आपको प्रभु कहते हैं, आपका सम्मान करते हैं, आपको प्रसाद देते हैं, आपकी सेवा करते हैं.
एंड एवरीवन आउटसाइड दिस डोर इज योर कंपेटिटर.
और इस दरवाजे से जितने भी लोग बाहर हैं वो आपके प्रतिद्वंदी हैं.
They want to push you down and take from you and compete with you.
वो आपको नीचे खींचना चाहते हैं, आपसे कुछ लेना चाहते हैं.
And a Vaishnava wants to push you up towards Krishna.
परंतु वैष्णव आपको ऊपर उठाना चाहते हैं कृष्ण की ओर.
And serve you.
आपकी सेवा करना चाहते हैं.
This is the principles of Vaishnava life.
ये वैष्णव जीवन के सिद्धांत हैं.
So as we become more advanced in spiritual life, we'll actually feel these things.
जैसे हम आध्यात्मिक जीवन में और प्रगतिशील हों, हमें इन सिद्धांतों का अनुकूल करना चाहिए.
Upadeshamrita says Aradhana. So there's four classes of devotees, three classes of devotees.
Upadeshamrita में कहा गया तीन श्रेणी के भक्त हैं.
What is this verse? I'm forgetting. No. What does the Radhanana Sarvesha, but not this? The neophyte devotee worships the Lord. Achayameva Hare Pujanya Shadhiti Natham Bhakteshu Chanyeshu Sabhakta Prakita Smrita. A neophyte devotee doesn't have to treat another devotee.
एक कनिष्ठ भक्त को ये ज्ञान नहीं है कि कैसे दूसरे भक्तों के साथ व्यवहार करना है.
But the symptom of a more advanced devotee is Ishvetada Dineshu Balesheshu Disachusha. Prema Maitri Kripopeksha. Thank you. Yakurosi Samadhyama. The more advanced devotee he worships the Lord. He wants to develop love for God and he develops friendships with devotees.
एक अत्यधिक जो प्रगतिशील भक्त है वो भगवान की पूजा करता है और भक्तों के साथ मैत्री स्थापित करता है.
He shows mercy to the innocent and he neglects envious persons.
और वह अन्य innocent
जो मासूम है उनको उन पर कृपा दिखाता है और जो द्वेषी है उनको निग्लेक्ट करता है. So these are the principles upon which we push on Krishna consciousness.
तो ये वो सिद्धांत है जिसके आधार पर हम कृष्ण भावनामृत को आगे बढ़ाते हैं.
Develop friendships with devotees. These are not just temporary relationships. They're lifelong, ultimately eternal relationships.
भक्तों के साथ मैत्री स्थापित करना ये कोई क्षणिक संबंध नहीं है, ये हमारा शाश्वत संबंध है, ये जीवन भर रहने वाले संबंध है.
Especially those devotees that you grow up with in Krishna consciousness.
विशेषकर ऐसे भक्त जिनके साथ हम कृष्ण भावनामृत में ग्रो कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं.
So we develop love for them and we serve those persons who are innocent, trying to bring them into the fold to benefit them.
तो हम ऐसे भक्तों के प्रति प्रेम को विकसित करते हैं और जो मासूम है हम उन्हें कृष्ण भावनामृत लाने का प्रयास करते हैं, उन्हें प्रचार करते हैं.
We have no worries for our own liberation.
हमें अपने खुद की मुक्ति की कोई भी चिंता नहीं है.
स्वामुक्ति का selfish principle of liberation.
जो ये एक स्वार्थी उद्देश्य है अपनी खुद की मुक्ति का.
We want to help the whole world. Srila Prabhupada always thought big, not just one country, one city. He thought, let me make the whole world Krishna conscious.
हम पूरे संसार की सहायता करना चाहते हैं, सिर्फ एक एक शहर एक देश ही नहीं. श्रील प्रभुपाद ने सोचा कि मैं मुझे पूरे संसार को वैष्णव बनाना है.
It's a nice story about my godbrother Gopavinda Bhav.
मेरे गुरु भाई गोपविंद भाव प्रभु उनका एक बहुत अच्छी कहानी है.
He was fortunate to receive a small notebook that Srila Prabhupada used to write phone numbers in and make little doodles and like this.
तो उन्हें शिला प्रभुपाद जी की एक डायरी प्राप्त हुई जिसमें प्रभुपाद जी कई लोगों के नाम और उनके नंबर लिखते थे.
And he kept it very carefully in a box with other sacred items.
और उन्होंने बहुत ही संभाल कर उस डायरी को रखा पवित्र जो वस्तुएं हैं उनके समक्ष.
So one day he was looking through that box and he thought, let me look through this little book.
तो उन्हें एक दिन उनके मन में विचार आया कि मुझे इसको खोल के एक बार दोबारा देखना चाहिए, पढ़ना चाहिए.
He In the back of the book, he'd never noticed before, but Srila Prabhupada had written one thing.
उस डायरी के पिछले पीछे उसने पहले कभी इस चीज को देखा नहीं था, बट प्रभुपाद जी ने एक चीज लिखी हुई थी.
Written it twice and sort of decorated around it in nice letters.
तो वो लाइन लिखी हुई थी और उसके चारों तरफ बॉक्स बनाया हुआ था, अच्छे तरीके से उसको सजाया हुआ था.
It said, "Save the whole world from godlessness."
पूरे विश्व को बचाओ इस नास्तिकवाद से.
Save the whole world from godlessness.
पूरे संसार को बचाओ.
Because we live in a godless world.
क्योंकि हम एक नास्तिकवाद संसार में जी रहे हैं.
People pay. We say in America, lip service. They say, "Oh, I believe in God. I worship God. I pray to God," but they have no idea who He is.
तो लोग सिर्फ ऐसे बोलते हैं कि मैं भगवान में विश्वास रखता हूँ, मेरे भगवान में आस्था है, परंतु उन्हें कोई ज्ञान नहीं है कि
Is he निराकार निर्विशेष ब्राह्मण?
क्या वो निराकार निर्विशेष ब्राह्मण है?
If he is निराकार निर्विशेष ब्राह्मण, how can he answer your prayer? He has no quality of compassion.
अगर वो निराकार निर्विशेष ब्राह्मण है तो वह आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर कैसे दे सकते हैं?
So you're wasting your time.
वो आपका जो समय है वो बर्बाद कर रहे हैं.
This is a foolishness that pervades this country.
तो ये मूर्खता है जो इस देश में फैली हुई है.
And in America, everyone's a Christian. Many people are Christians.
और अमेरिका में क्रिश्चियन.
This is another foolishness that guy got nailed to a cross.
ये एक अन्य मूर्खता है कि उन्हें लगता है कि भगवान को एक क्रूस पर टांग दिया गया.
And that there's no past life and there's no future life and you only get one chance.
और आपका कोई पूर्व जीवन नहीं है, आपका भविष्य का कोई जीवन नहीं है, आपको सिर्फ एक ही मौका दिया गया है.
But God is so cruel and uncompassionate, he has no compassion, that he only gives you one chance for liberation. And if you don't take that one chance, you're going to burn in hell forever.
कि भगवान इतने क्रूर हैं, उनमें किसी भी प्रकार की करुणा नहीं है कि आपको सिर्फ एक ही मौका दिया गया है मुक्ति के लिए, और अगर आप उस मौके को गवा देते हैं तो आप शाश्वत के लिए आपको नरकों में जलाया जाएगा.
And you're going to be burning in a lake of fire, and there's a devil who's poking you, and you're breathing nasty air, but Jesus loves you.
तो आपको उस अग्नि के अंदर जलाया जा रहा है, सड़ाया जा रहा है, और आपके मुंह से गंदी श्वास निकल रही है, और आप ऐसी विषम परिस्थिति में हैं, परंतु भगवान जीसस आपको प्रेम करते हैं.
Any ordinary man can forgive a person dozens of times, but God can only give you one chance.
एक साधारण व्यक्ति आपको दर्जनों बार माफ कर सकता है, तो क्या भगवान ऐसे हैं कि आपको सिर्फ एक ही मौका देंगे?
And Islam.
और इस्लाम.
They say God is Al-Rahim, Al-Rahman, Al-Latif, Al-Razak. Allah, He's great, He's powerful, He's merciful, He's gentle. These are characteristics of a person.
कि भगवान इतने महान हैं.
But can it, this is a nice kartal, they're very handy for kirtan. But it can it be merciful? Can it be powerful? Can it be gentle? Those are all names of a person, not a thing. God's not a thing, He's a person.
तो जैसे ये करतार है, ये भी बहुत करुणामय हो सकती है, महान हो सकती है. तो ये जो सारी चीजें हैं, ये एक व्यक्ति के नाम है.
But they say to give quality or personality to God is haram.
परंतु वो कहते हैं कि कोई गुण व्यक्ति को गुण देना, उसका रूप देना, वो हराम है.
And because
वो भगवान के ऊपर आरोप करना है.
And because they're philosophically shallow, because they're philosophically deficient, they preach with a sword. They don't preach with words. They say, "Accept Allah or I'll kill you." What is that philosophy? This is not religion.
क्योंकि वे दार्शनिक रूप से इतने कमजोर हैं. वो तलवार के बल पर प्रचार करते हैं, वो शब्दों से प्रचार नहीं करते. वो कहते हैं आप इस धर्म को स्वीकार करो, नहीं तो मैं आपको मार दूंगा.
And none of these people have any clear conception of God.
और इनमें से किसी को भी भगवान के बारे में स्पष्ट रूप से कोई ज्ञान नहीं है.
They say there is God, but what is he doing?
वो कहते हैं भगवान है, परंतु वो क्या कर रहे हैं?
Does he have a place to live or is he homeless?
क्या उनके पास रहने का स्थान है या वो उनके पास कोई बेघर है?
Does he have friends or is he nobody likes him?
क्या उनके कोई मित्र हैं या उन्हें कोई पसंद नहीं करता?
Does he eat food or is he starving?
क्या वो कुछ खाते हैं या भूख से तड़प रहे हैं?
Does he wear clothes or is he naked?
क्या वो कपड़े पहनते हैं या नग्न है?
So what does he wear? What does he eat? Who are his friends and where does he live? They do not know.
तो तो वो क्या करते हैं, क्या खाते हैं, क्या उनके कार्य हैं, कहां पर रहते हैं, उनको कुछ भी ज्ञान नहीं है.
They're ignorant people in the name of religion.
वो धर्म के नाम पर अज्ञानी पुरुष हैं.
Now we can speak strongly like this in association of devotees, but we should be a little more respectful in the public.
तो हम भक्तों के संग में इतने हम स्ट्रांगली बोल सकते हैं, परंतु पब्लिक में हमें और भद्र रूप से प्रस्तुत करना
चाहिए.
परंतु ये कड़वे सत्य हैं, उनका भगवान के बारे में कोई अधिक मात्रा में ज्ञान नहीं है.
So the greatest act of compassion, the greatest mercy we can do is to help people come to this understanding of the personality of Godhead, the supreme personality of Godhead, Lord Krishna.
तो सबसे बड़ी करुणा जो हम लोगों पर दिखा सकते हैं, उनकी सबसे बड़ी सहायता जो कर सकते हैं, उन्हें परम पुरुषोत्तम भगवान तक लाएं.
And this is the mercy of devotees.
और ये भक्तों की कृपा है.
And this is how we save people. This is how we were saved. This is how everyone is saved from the jaws of death, the crocodile of death that one day will attack us all.
तो इस प्रकार से हम लोगों को बचाते हैं. इस प्रकार से हम बचे हैं, और यही तरीका है कि जो मृत्यु का घड़ियाल है उसके चुंगल से लोगों को बचाने का.
Thank you for your kind attention. Does anyone have any question?
आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद अपने ध्यान के लिए. आपके में से किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं.
अन्याभिलाषिता शून्यं ज्ञान क्रमद्विनायुतं अनुकूलेन कृष्णानुशीलनं भक्ति उत्तम. उत्तम भक्ति मीन्स आई हैव नो अदर इंटरेस्ट बट टू प्लीज द लॉर्ड.
उत्तम भक्ति का अर्थ है मेरी और कोई रुचि नहीं है सिवाय भगवान को प्रसन्न करने में.
दिस इज द स्टैंडर्ड दैट श्रीला प्रभुपाद एंड हिज रिप्रेजेंटेटिव्स एक्सपेक्ट अस ऑल टू कम टू.
और श्रीला प्रभुपाद और उनके जितने प्रतिनिधि हैं हमें इस स्टैंडर्ड पर आने की हमसे अपेक्षा रखते हैं.
बिकॉज पुटिंग दिस तिलक एंड पुटिंग अ डिवोट एंड पुटिंग डोटी और सॉरी मींस दैट वी आर रिप्रेजेंटिंग द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड इन आवर एंटायर गुरु परंपरा.
तो ये तिलक लगाना और ये वेशभूषा धारण करने का अर्थ है हम भगवान और परंपरा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं.
इट इज द मोस्ट रिस्पेक्टेबल पोजीशन इन ऑल ऑफ सोसाइटी.
ये पूरे समाज में सबसे अधिक मात्रा में जो आदरणीय स्थिति है वो ये है.
एंड इट रिक्वायर्स द हाईएस्ट लेवल ऑफ मोरालिटी.
और इसमें सबसे उच्च मात्रा का नैतिकता चाहिए.
And that means anyabhilashita shunya. We make our own personal, our abhilash, our personal abhilash, zero, shunya.
Anya abhilashita shunya. Hamari jitni bhi apne khud ke liye abhilasha hai, koi anya jitni abhilasha hai, usko shunya.
That we collect money for printing books and building temples and distributing prasad, not for our own personal interest.
तो हम जो धन एकत्रित करते हैं वो पुस्तक प्रकाशन के लिए, वितरण के लिए, मंदिरों के निर्माण के लिए, प्रसाद वितरण के लिए करते हैं. हमारा खुद का कोई उसमें स्वार्थ नहीं है.
We preach Krishna consciousness not for name and fame, but to represent the Supreme Lord and dispel ignorance where there is, to give knowledge where there is darkness.
हम कृष्ण भावनामृत का प्रचार अपने खुद के यश के लिए नहीं करते, परंतु इस अज्ञान को हटाने के लिए, भगवत ज्ञान का प्रचार करने के लिए करते हैं.
Everything is for Krishna.
हर चीज भगवान कृष्ण के लिए है.
And that is one definition of pure devotional service.
शुद्ध भक्ति की ये एक परिभाषा है.
So Prabhupada would say, judge something by the result.
श्रीला प्रभुपाद कहते थे किसी चीज का जो जज है उसको उसके परिणाम से करो.
So by living this life we get the result of feeling for Krishna, realization of Krishna.
तो इस प्रकार का जीवन जीने से हमें कृष्ण का साक्षात्कार होगा.
It's a scientific formula.
ये बहुत ही वैज्ञानिक तरीका है.
Like in science, they do a chemistry lab.
जैसे कि विज्ञान में केमिस्ट्री के लैब में अगर आप जाएं.
Hundreds of thousands of students have done the laboratory work before.
हजारों जो स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने लैब वर्क पहले किया है.
Like they give you silver and nitric acid.
अगर आपको सिल्वर और नाइट्रिक एसिड दें.
And you make silver nitrate.
आप सिल्वर नाइट्रेट बनाएं.
Then you precipitate the silver out, and then you get a certain amount of silver, and you measure it, and you're supposed to, if you do it correctly, all the numbers come out correctly.
उसमें से अगर आप सिल्वर को निकाल लें, उसका मेजर करें, तो सारे जो नंबर हैं, बिल्कुल सही मात्रा में आएंगे. अगर आपने ठीक किया है.
It's scientific.
ये पूरा वैज्ञानिक है.
So our process is also scientific. If we follow the process, we get the result.
तो हमारी जो विधि है ये भी वैज्ञानिक है. अगर आप इस विधि का सही रूप से पालन करते हैं तो निश्चित रूप से परिणाम मिलेगा.
And the process is to entreat the Lord for mercy. That I'm following this, I'm begging your mercy. I want to serve you, I want to love you, I want to go back to you, and I want to help other people do the same thing.
ये विधि है भगवान की शरण ग्रहण करना, उनसे प्रार्थना करना कि मुझे आपकी कृपा की आवश्यकता है, आप उनकी सेवा करना.
In this way we hope to attract mercy of the Lord.
और इस प्रकार से हम भगवान कृष्ण की कृपा आकर्षित रखने की आशा रखते हैं.
Who says in Gita, "Anya priyataro bhuvi," there's no one more dear to me than does this thing to help other people become Krishna conscious.
भगवान कहते हैं, भक्त से अधिक मात्रा में प्रिय मुझे कोई नहीं है जो अन्य लोगों की सहायता करता है कृष्ण भावनामृत बनने में.
And Srila Prabhupada's life was the prime example of this. If you want to know what is the standard, then examine Srila Prabhupada's life.
श्रीला प्रभुपाद का जीवन इस सिद्धांत का स्वरूप था. अगर आप कुछ किसी चीज को जज करना चाहते हैं श्रीला प्रभुपाद के जीवन से, आप कीजिए.
All these other so-called avatars and yogis and bogis and gurus, all cheaters.
जितने भी तथाकथित अवतार हैं, योगी भोगी हैं, ये सब बिल्कुल धोखेबाज हैं.
We saw so many of them in the past, and there's so many in the present. Actually, this country is an avatar factory.
हमने इतने भूतकाल में और वर्तमान में ऐसे कितने अवतारों से डील कर रहे हैं. ये जो देश है ये अवतार फैक्ट्री है.
But in due course of time, their material desires come out, and they're revealed as a cheater.
और कितने ही स्थान पर उनके जो भौतिक इच्छाएं हैं प्रकट होती हैं और वो एक्सपोज होते हैं बिल्कुल धोखेबाज के रूप में.
We never saw any slightest spot, any taint, anywhere in Prabhupada's whole life.
और श्रीला प्रभुपाद के जीवन में कहीं रंच मात्र भी ऐसी चीज देखने को नहीं मिलती.
Even when he's 6 years old, he's doing Rath Yatra.
जब वो उनकी आयु 6 वर्ष की है वो तब रथ यात्रा कर रहे हैं.
One Hastareka, palmist, looked at Prabhupada's palm and he said, "Hukum chalega."
तो एक जो हस्त जो हाथ देखते हैं तो उन्होंने प्रभुपाद जी का हाथ देखा और कहा हुकुम चलेगा.
Even as a 6-year-old child, hukum chalega. All the ladies were cooking for him. All his father made a court, and all the children in the neighborhood are doing Rath Yatra because he organized the whole thing.
तो जब प्रभुपाद 6 वर्ष के भी थे तो घर में जितनी स्त्रियां थी वो सारा भोग बना रही थी भगवान के लिए. उनके मित्र उनकी सहायता कर रहे थे. जितने पुरुष थे वो सेवा में लगे हुए थे क्योंकि प्रभुपाद जी ने उस समय रथ यात्रा का आयोजन किया था.
Prabhupada's whole life, he never took one cent, one penny, one paisa for himself.
श्रीला प्रभुपाद जी ने पूरे जीवन एक पैसा भी अपने खुद के लिए नहीं लिया.
He would keep careful record in New York City. You see his journal, you know, 25 cents haldi, 15 cents salt, 50 cents oil. He kept track of every penny because he saw every penny is for Krishna, and he used everything, his whole life, in Krishna's service.
अब श्रीला प्रभुपाद जी की डायरी पढ़ेंगे न्यूयॉर्क में विशेषकर देखेंगे एक एक पैसे का प्रभुपाद जी ने हिसाब रखा हुआ है क्योंकि वो जानते थे कि ये सारा पैसा भगवान कृष्ण का है.
He almost died coming to America.
वो बिल्कुल लगभग मृत्यु को प्राप्त हो गए थे अमेरिका जाने के लिए.
We should ask ourselves, are we willing to sacrifice our life to that extent to serve Srila Prabhupada as he served us?
तो हमें अपने आप से प्रश्न पूछना चाहिए, क्या हम जीवन अपना जीवन इस प्रकार से त्याग करना चाहेंगे जितनी मात्रा में प्रभुपाद जी ने किया हमारी सेवा के लिए?
Someone broke into his room and stole his Gita manuscript.
कोई उनके कमरे में घुसकर उनके जो गीता के मैन्युस्क्रिप्ट थे उनको चुरा लिया.
Stole his typewriter.
उनके टाइपराइटर को चुरा लिया.
One crazy drug intoxicated hippie boy threw him down the stairs.
एक जो ड्रग एडिक्ट हिप्पी था उन्होंने उन पर प्रहार किया, उनको सीढ़ियों से नीचे धक्का देके फेंका.
Prabhupada sacrificed so much to create this ISKCON society.
श्रीला प्रभुपाद जी ने इतनी मात्रा में त्याग किया इस ISKCON सोसाइटी की स्थापना के लिए.
To give the highest thing to the lowest class of people.
सबसे जो पतित जीव है उनको सबसे उच्च चीज देने के लिए.
Because when Prabhupada came, we didn't know anything, not a single thing.
जब श्रीला प्रभुपाद जी देश में गए तो वहां के लोगों को एक चीज भी नहीं पता थी.
There is a very nice story in this connection.
इस संदर्भ में बहुत अच्छी लीला है.
At the first initiation ceremony, Srila Prabhupada collected the money for bhoga. He cooked, he offered, he served the devotees, he did the agnihotra. And then when it was time for the devotees to offer their pranam, they didn't even know to offer their pranam to their guru.
जब पहली दीक्षा समारोह हुआ तो श्रीला प्रभुपाद जी ने धन इकट्ठा किया, भोग खरीदा, प्रसाद बनाया, यज्ञ किया और जो शिष्य थे उनको इतना भी ज्ञान नहीं था कि किस प्रकार से गुरु को प्रणाम करना है.
They took it very casually.
तो उन्होंने बहुत ही सहजता से लिया.
So Prabhupada had to tell them, bow down.
तो शिला प्रभुपाद जी को उनको बताना पड़ा कि प्रणाम करो.
Now you should bow down.
कि अब आप प्रणाम करो.
And the devotees are looking at each other like, what do you mean, bow down?
तो वहां पर जो उपस्थित लोग थे आपस में एक दूसरे को देख रहे थे, उनका इसका क्या मतलब हुआ कि प्रणाम करो नीचे उनको.
So the fire was going down a bit, so he went, he kept blowing on the fire.
और जैसे ही आग उसकी कम हो रही थी या क्या कौन की फूंक मार मार के किसी तरह से उस आग को.
They thought that Srila Prabhupada wanted him to blow on the fire to make the fire come up.
तो श्रीला प्रभुपाद जी ने कहा था प्रणाम करो, और उन्हें लग रहा था कि प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि फूंक मारकर इस अग्नि को प्रज्वलित रखो.
What kind of sacrifice Prabhupada made?
कितनी मात्रा में प्रभुपाद जी ने ये त्याग किया.
And we should ask ourselves, are we willing to do that for him as he did for us?
तो हमें अपने आप से प्रश्न पूछना चाहिए, क्या हम तैयार हैं वो करने के लिए जो श्रीला प्रभुपाद जी ने हमारे लिए किया.
Because it's only by his mercy that we're sitting here together.
क्योंकि ये सिर्फ उनका करुणा वर्ष है, उनकी कृपा से है जो हम यहाँ पर उपस्थित हैं.
So if you want to know what true devotional service is, you study the life of Srila Prabhupada.
तो अगर आप जानना चाहते हैं कि शुद्ध भक्ति क्या है, आप श्रीला प्रभुपाद जी का जीवन पढ़ें.
Thank you for your nice question.
बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस अच्छे प्रश्न के लिए.
Thank you, Prabhuji, for a very wonderful description. You said that the relationship between the devotees should not be momentarily; it's a permanent lifetime. But we see our relationship changes with the circumstances.
Yeah.
Our relationship with the devotees, they keep on changing with the circumstances.
Yeah.
So, what kind of relationship are those? I mean, they're just superficial, or how to deepen those relationships?
I'm not sure exactly understand the question. What changes?
Like normally our relationship with the devotees, they keep on changing as the circumstances change.
Okay.
So,
external circumstances.
Yeah.
Maybe you can translate this.
तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रभुजी, आपने इतना सुंदर वर्णन किया. जैसा आपने कक्षा में बताया कि जो भक्तों के साथ संबंध है हमारे शाश्वत है, परंतु हम देखते हैं कि जैसे परिस्थिति बदलती है हमारे भक्तों के साथ संबंध बदलते रहते हैं, तो इस बात को कैसे समझें?
Bhagavatam talks about relationships like leaves and sticks going down a river.
Srimad Bhagavatam vandan karta hai ki sambandho ke bare mein ki us prakar se tinke hain jo ek nadi mein beh rahe hain.
And these leaves and sticks may come in a little whirlpool and they'll twirl around for some time and then be separated.
To nadi mein jab ek whirlpool hota hai to ho sakta hai us kai sare tinke ek sath aaye aur fir kuch samay baad wo alag alag dishaon mein beh jaye.
So this is the nature of the material world. Nothing remains forever.
तो ये इस भौतिक संसार का नियम है कि कुछ भी शाश्वत नहीं रहता.
Bhagavad Gita says, "Adibhutam shuro bhava." Material nature is endlessly mutable. It's always changing.
कि जो भौतिक प्रकृति है हमेशा बदल रही है.
That's one thing that never changes. It's always changing.
तो एक चीज है जो परिवर्तित नहीं होती और एक चीज है जो परिवर्तित होता रहता है.
Okay.
भौतिक जगत में एक चीज ऐसी है जिसमें कोई परिवर्तन नहीं आता, वो ये है कि इस भौतिक जगत में हमेशा परिवर्तन आएगा ही आएगा.
So by force of circumstances, relationships change. One devotee goes here, one devotee goes there, one devotee gets married, one devotee remains celibate. So many changes in their life, but the foundation of a relationship is a relationship with our spiritual master, with ISKCON, with Srila Prabhupada. These things should not change.
तो ऐसे निश्चित रूप से अलग अलग परिस्थिति आती है कि कोई एक वक्त कहीं जाता है, दूसरा वक्त कहीं जाता है, कोई गृहस्थ आश्रम में जाता है, कोई ब्रह्मचारी रहता है, परंतु हमारे जो सभी संबंधों का आधार है वो है हमारे आध्यात्मिक गुरु से संबंध, प्रभुपाद से संबंध, ISKCON से संबंध, भगवान से संबंध. तो ये नहीं बदलना चाहिए.
Because the relationships that you're developing now should carry you throughout your life.
तो जो संबंध आप अभी बना रहे हैं ये संबंध आपको पूरे जीवन आपको स्थिर रखेंगे.
I recently joined a Facebook group, Prabhupada Disciple Facebook group.
मैंने अभी ही प्रभुपाद डिसिपल्स का जो फेसबुक ग्रुप है उसको ज्वाइन किया.
I thought, okay, I'll join Facebook.
So मैं लगा ठीक है मैं Facebook में join कर लेता हूँ.
So 700 devotees and 700 Prabhupada disciples on this group.
उस ग्रुप में 700 श्रीला प्रभुपाद जी के शिष्य हैं.
And there's a lot of contentious discussion, but more than that, to be reconnected with devotees I used to go on traveling Sankirtan with, that I grew up with, and I haven't seen or been in touch with for 30 years.
तो वहाँ पर कई अलग अलग विषयों में चर्चा होती है, परंतु ऐसे भक्तों के साथ दोबारा संबंध होना जिनके साथ मैंने कभी ट्रैवलिंग संकीर्तन में गया था और 30 सालों से मुझे नहीं पता था वो कहाँ है.
So one's in California, one's in Texas, one's in Washington State.
कोई कैलिफोर्निया में है, कोई टेक्सास में, कोई वॉशिंगटन स्टेट में.
We think this is my friend. We used to take prasadam together. We used to break the ice in the river to take baths together while traveling Sankirtan.
तो परंतु ये वही मित्र हैं जिनके साथ मैं प्रसाद लेता था, जिनके साथ मैं बर्फ तोड़ता था पानी निकालने के लिए, ट्रैवलिंग संकीर्तन में स्नान करना होता था नदी में जब बर्फ जम रहा था.
These are my eternal friends. I have so much love for them, even though I don't see them anymore.
तो ये मेरे शाश्वत मित्र हैं, हालांकि मैं उन्हें नहीं अभी देख पा रहा, परंतु मेरा जो प्रेम है इनके लिए शाश्वत है. परंतु वो दोबारा से एक साथ होंगे शिला प्रभुपाद जी के साथ, ये एक तथ्य है.
One time Shila Prabhupada was sitting with some disciples in England.
In?
England.
England में एक बार शिला प्रभुपाद जी अपने कुछ शिष्य के साथ बैठे हुए थे.
That nasty country that invaded India.
तो ऐसा एक नास्टी देश जिन्होंने भारत पे राज किया था, इंग्लैंड.
दुष्ट लोका.
दुष्ट लोका.
So Srila Prabhupada was sitting with the disciples, and one disciple was complaining to Srila Prabhupada that I was working this nasty job. It was hot, steel mill, dirty, repetitive. I couldn't deal with it. I had to quit.
तो एक शिष्य इस प्रकार से कंप्लेन कर रहा था प्रभुपाद जी से कि मैं कोई ऐसा एक कार्य करना पड़ रहा है स्टील मिल में जो इतना दुखदायी है, इतना बोरिंग है, मेरे को इतना कष्ट सहन करना पड़ता है, मैं इसको और अधिक कंटिन्यू नहीं कर सकता.
Srila Prabhupada said, yes. You can't tolerate this kind of work because you were all born as Brahmins in India in your last life.
Srila Prabhupada ने कहा, हाँ, परंतु आप ऐसा नहीं कह सकते, आप पिछले जन्म में भारत में आपका जन्म हुआ था ब्राह्मण परिवार में.
And Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur has sent you all to me and now we're all together.
और Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur ने आप सबको भेजा है इस जीवन में मेरे साथ और अब हम एक साथ हैं.
So it's one of those special moments. All the devotees became blissful. Hari Bol, Hari Bol.
तो सारे भक्त ये सुनकर बहुत ही प्रसन्न हो गए और सारे बोल रहे थे हरि बोल हरि बोल.
So in the same way, please consider this very deeply. Is that Srila Prabhupada has sent all of you to serve his disciples and push on this Krishna consciousness movement.
तो इसलिए आप सब भी इसी प्रकार से सोचें कि श्रीला प्रभुपाद जी ने आप सबको भेजा है श्रीला प्रभुपाद जी के शिष्यों की सेवा करने के लिए, इस कौन संस्था को आगे बढ़ाने के लिए.
This is eternal spiritual relationships. Eternal spiritual relationships.
ये शाश्वत आध्यात्मिक संबंध है.
So external circumstances change. It's the nature of the world. Our body itself is temporary. Your guru's body is also temporary. This is the law of material nature. No one can check it. But relationship is spiritual. Vani seva.
तो ये जो बाह्य परिस्थिति है, ये प्रकृति का नियम है, ये बदलेंगे ही बदलेंगी. आप हमारा खुद का शरीर बदल रहे हैं, यहाँ तक कि जो आपके गुरु का शरीर है वो भी बदल रहा है, ये प्रकृति का नियम है. परंतु जो संबंध है वो आध्यात्मिक है, वाणी सेवा, ये शाश्वत है.
Thank you, Vaishnavi, for reminding us that the crocodile of death is right around the corner. My question was to do with the part that you highlighted about the senses, that whenever we get allured or in a situation where we are attracted to sense objects, we should understand that we are not the senses. But how do we practically preach to ourselves that when I'm faced with an occasion when sense object is alluring me, how do I remind myself constantly that I am not the senses? तो मेरा प्रश्न ये है कि व्यावहारिक दृष्टि से हम अपने आप को कैसे याद दिला दें कि जब इंद्रिय विषय वस्तु जब हमें प्रलोभन देती है तो किस प्रकार स्वयं को ये याद दिलाएं कि हम इंद्रिय नहीं हैं.
The real problem is our mind. The mind seeks gratification through the senses.
तो जो मेन हमारी समस्या है वो है हमारा मन और उसका आकर्षण इंद्रिय विषयों के द्वारा.
This is why Krishna says in Gita, Jitatmana Prashantasya Paramatma Samahita Sitoshna Sukudipeshu Tatamana Tamade. One who's conquered the mind is aloof toward heat and cold, honor and dishonor, happiness and distress. He conquers the mind and he connects with Super Soul.
भगवान भगवद गीता में बताते हैं कि ऐसा व्यक्ति जिसने मन पे विजय प्राप्त कर ली है तो वो परमात्मा से उसका संबंध स्थापित हो गया है.
So the real struggle isn't with our senses, it's with the mind, because the mind wants to enjoy through the medium of the senses.
तो हमारा इंद्रियों से इतना संघर्ष नहीं है जितना मन से है, क्योंकि मन है जो इंद्रियों के माध्यम से उन इंद्रिय विषयों को भोगना चाहता है.
Krishna gives many recommendations. He says, Udara-natmanatmanam-natmanam-avashadya. That one should elevate himself by his mind, not degrade himself. And the degradation means, I'll be happy through my senses. So we have to appreciate the mind is also separate from the self.
और मन को नियंत्रित करने के लिए भगवान कई सलाह देते हैं. बताते हैं कि मन के सहयोग से व्यक्ति को अपने आप को ऊपर उठाना चाहिए, नीचे नहीं गिराना चाहिए. नीचे गिराने का मतलब इंद्र तृप्ति करना.
So Bhagavad Gita recommends constant practice and detachment to control the mind.
तो भगवत गीता में भगवान कहते हैं अभ्यास और वैराग्य के द्वारा, निरंतर अभ्यास और वैराग्य.
This अभ्यास योग युक्तेन चेतसानन्यगामिनः परमं पुरुषं जगं जाति पार्थान चिन्ते. This takes practice by making this our only objective in life, pure Krishna bhakti.
तो ये इसके लिए अभ्यास की आवश्यकता है. अगर हम अपने जीवन का ये उद्देश्य एकमात्र उद्देश्य बनाए शुद्ध कृष्ण भक्ति.
श्रीमद् भागवतम 11th canto is a story of Aila Gita.
श्रीमद् भागवतम 11th स्कंध में उद्धव गीता बताया.
So there it's a long story, but basically the conclusion is the Avanti Brahman says that it's not the stars, it's not karma, it's not the modes of nature. The only problem is the mind. So it's our only problem.
Asnavanti Brahman कहते हैं कि ये सितारों से नहीं, हमारे कर्मों से नहीं, ऐसे अन्य अन्य चीजों ये समस्या नहीं, हमारी एकमात्र समस्या है हमारा मन.
Because the mind has been running wild for many lifetimes.
क्योंकि ये जो मन है बिल्कुल जंगली पशु की तरह इधर उधर भाग रहा है कई जीवन से.
And to control it is difficult, but there is a process.
उसको नियंत्रण करना कठिन है परंतु इसका एक विधि है.
श्रीमद् भागवतम gives the example of training a horse.
श्रीमद् भागवतम उदाहरण देता है किस प्रकार से हम एक घोड़े को प्रशिक्षण देते हैं.
If you want to train a horse so you can sit on it and ride.
अगर आप उसे प्रशिक्षण देना चाहते हैं तो आप उस पर बैठकर सवारी कर सकते हैं.
But if you jump on a wild horse, it'll immediately throw you off.
परंतु अगर आप उस पर कूदते हैं, कूद कर बैठते हैं, वो आपको तुरंत गिरा देगा.
So the system is, you make friends with it, you give it some food, you brush it, you pat it, you develop relationship.
तरीका है कि आप उसको कुछ खाना दें, उसको सलाएं, उसके साथ एक संबंध बनाएं.
Then one day you put a bridle on it.
और एक दिन आप उस पर लगाम कसते हैं.
Then one day you put a saddle on.
और एक दिन आप उस पर जो सीट है उसको लगाएं.
And then you can get on the horse.
तब आप उस घोड़े पर चढ़ सकते हैं.
And he will accept.
और वो स्वीकार करेगा.
So in the same way, one can't expect that the mind will be immediately controlled and completely surrendered to a life of pure Krishna consciousness.
तो हम ये अपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि मन है वो तुरंत ही हमारे नियंत्रण में आ जाएगा और अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पण कर देगा एक शुद्ध कृष्ण भावना हमारे जीवन के लिए.
So we accept the process of Krishna consciousness that begins आदो श्रद्धा.
तो हम कृष्ण भावनामृत की विधि को स्वीकार करते हैं जिसकी शुरुआत होती है आदव श्रद्धा से,
साधु संग
से,
अनर्थ निवृत्ति से, अभजन क्रिया
और अनर्थ
अभजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति से. नॉट इमीडिएटली इन द बिगिनिंग दैट वी जंप ऑल ओवर पीपल. आर यू एनी ऑनियंस? डू यू ईट गार्लिक? आर यू वर्शिपिंग द डेमिगॉड्स?
ऐसा नहीं है कि हम शुरू शुरू में सभी लोगों को इस प्रकार से बोलने लग जाएं कि आप प्याज दर्शन खाते हो, आप शराब पीते हो.
He said, "Come, chant Hare Krishna, eat wonderful food."
वो कहते हैं हम लोगों को निमंत्रण देते हैं कि आप आए हमारे साथ हरे कृष्ण जप करें, प्रसाद लें.
And as we make friends with our own mind, we should make friends with other people and attract them to the wonderful nature of Krishna consciousness. Chant, dance, and be happy.
जैसे हम अपने मन के साथ मैत्री संबंध संबंध स्थापित करें, उसी प्रकार से हमें अन्य लोगों के साथ मित्रता स्थापित करनी चाहिए और उन्हें निमंत्रण देना चाहिए यहाँ कृष्ण भावना में परिवार में जुड़ने के लिए.
उत्साह निश्चय धैर्य, we should be enthusiastic, determined and patient.
उत्साह निश्चय और धैर्य.
It takes time to become Krishna conscious.
कृष्ण भावनामृत बनने के लिए समय लगता है.
In Kali Yuga society, people are addicted to microwave everything.
कलयुग में हर जो लोग हैं वो एडिक्टेड है, उन्हें तुरंत चीज चाहिए, माइक्रोवेव का उपयोग करते हैं.
Microwave relationships, microwave business, microwave food. Just turn, put in the oven, turn on, done, let's go.
Microwave का microwave संबंध, जैसे कुछ इसमें डाले ऑन करें और यस तुरंत बिल्कुल चीज रेडी हो जाए.
Devotional life is not like that.
आध्यात्मिक जीवन इस प्रकार का नहीं है.
It takes time.
इसके लिए समय लगता है.
According to our Purvapunya or Purvapap also.
जो हमारे पूर्व पुण्य है, पूर्व पाप है, उसके कारण भी समय लगता है.
Srila Prabhupada said, just like a grass, if a spark falls on dry grass, immediately starts to burn. If it falls in slightly damp, it'll take time. If it falls in the water, it's extinguished.
जैसे कि एक चिंगारी अगर सूखी घास पर पड़े तो तुरंत ही वो आग पकड़ लेंगे, परंतु अगर वो गीली घास पर पड़े तो उसमें समय लगेगा, या पानी में गिरे तो और अधिक समय.
So we see some devotees, they come in contact with this kind. Pure devotional service, immediately they're attracted. Where do I sign? I want to join. This is wonderful.
तो हम देखते हैं कि कुछ लोग कृष्ण भावनामृत इस समाज के संपर्क में आते हैं और तुरंत ही वो आकर्षित हो जाते हैं और कहते हैं नहीं मुझे इसमें कैसे इसको ज्वाइन किया जा सके. कुछ लोग कहते हैं कि ये क्या है, ये तो पूरा बेकार है.
Second Chaitanya Charitamrita, the devotees are chanting Hari Hari, and the Muslims are going, oh, what did you steal? What did you steal? Ha ha, big joke.
The Chaitanya Charitamrita में इस प्रकार का आता है, जो भक्त लोग Hari Hari कह रहे होते हैं और जितने मुसलमान हैं, वो कह रहे होते हैं कि उनका मजाक उड़ा रहे होते हैं कि आपने क्या चुराया.
So also in the old days of ISKCON, people would make a big joke of the devotees.
तो जो इस्कॉन के पुराने दिनों में जो लोग हैं वो बहुत बड़ा मजाक करते थे भक्तों के साथ,
because we were all tuckle wallahs.
क्योंकि हम सारे टकले थे.
And they say, oh, this, there's a hairy Krishnas.
तो वो कहते थे ये हेरी कृष्ण है.
No, it's not hairy Krishnas, the hairless Krishnas. Hairless Krishnas.
हरे कृष्ण नहीं है, ये हेयरलेस कृष्ण है.
So even though they're chanting Krishna, there is no attraction for them.
हालांकि वो कृष्ण नाम कह रहे हैं परंतु कृष्ण के प्रति कोई आकर्षण नहीं.
This is sankirtan, sankirtan parihasyam va stavam helanam eva va vaikuntha namam graham asheshaga haram vidur. They're relieved from unlimited sins, even though they're joking, they're making fun of the devotees.
हालांकि वो परिहास में कृष्ण का नाम ले रहे हैं, अनगिनत पापों से वो मुक्ति प्राप्त कर रहे हैं.
But sometimes we meet inimical people.
और कभी कभार हम ऐसे लोग से मिलते हैं जो थोड़े वैशी स्वभाव के.
You Hare Krishna people are awful. You're bogus.
कि आप हरे कृष्ण, आप बिल्कुल ही भयावह हैं.
We go, who? Hare Krishna, you're useless people. Who? Hare Krishna. These are the old days of being on the street. Our bhakti program in the old days, here's your book bag, here's a bag full of BTGs, go hit the sidewalk.
हमारा जो उस समय न्यू भक्त प्रोग्राम होता था, सबको एक बैग पकड़ाया जाता था, इसमें BTGs होती थी, बुक्स होती थी, और आप जाओ रोड में निकलो.
We learned very quickly to think on our feet. Learned very quickly to think on our feet. It's an American saying, to think on your feet. To be quick-minded.
तो हाजिर जवाब होना हमने बहुत ही जल्दी सीख लिया इस प्रकार से.
So I don't mind, I don't want to keep everyone here. This devotees have busy day of devotional service. Thank you very much for your kind attention. Srila Prabhupada ki jai. Srila Prabhupada jiskan ki jai. Jai Gaur Prema.
Jai Sarvadev Prabhu.